कल्पतरुभ्यश्च कृता सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नाम्ने गौरवर्धिते हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कंस राधा कंस नमस्ते सप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विद्वान प्रणमामि हरि हा देविका तू भरगद गदयाद्य वाचा जाते निपत्त भू दंडवतो उद्भवतारते अस्य प्रसादमभुजस्य जनस्य हित्वा गन्धर्विके तव अङ्गश्यामलिं सदाभिरमितो मन्दे कुचन्दूवरं यच्छञ्जागुदरोचितां चिदतिसम्पत्सम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदर राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभ्रजन् भक्त्याभिन्नाय पराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरं कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणे गौरचन्द्राय राधे कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्राप्तजन्तमनुषे समपेतचैत्यं द्वैपायनो विरहकाशुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो भूतो संसर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे माम कल हम लोगों ने तन मनस्क सदालापास्तक विशिष्टा सदात्मिका सद्गुण गानी व गायन को नात्मा गारानी संस्थल इस श्लोक की व्याख्या की गोपियों की व्याख्या हम लोगों ने गोपियों की कृष्ण की आराधना सर्वोत्तम जैसे वे करती थी जिस रूप में कृष्ण की आराधना उन्होंने किया है कहीं भी इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं अपना उदाहरण अपने आप यदि किसी को प्रेमा भक्ति की आवश्यकता हो तो गोपियों के कृष्ण के प्रति जो भाव है उनको अनुसरण करने की चेष्टा करनी वही इसमें बदलाव था जिसकी हमने कल व्याख्या की थी। कृष्ण में तन्मय रहती थी, उनके आलाप में मग्न रहती थी। यहाँ पर तो केवल आलाप दिया है, आलाप अनुलाप विलाप संलाप अनुलाप इत्यादि बहुत प्रकार के 10 प्रकार के भेद इत्यादि अलग अलग सबके उदाहरण है। भ्रमर गीता में ये सबका वर्णन किया गया है, एक एक श्लोक एक एक के लिए वर्णन किया गया है। उसकी परिभाषा भी अलग अलग है, संलाप किसको कहते हैं, विलाप किसको कहते हैं, अनुलाप किसको कहते हैं, प्रलाप किसको कहते हैं इत्यादि सब। और विशेषता, विविध प्रकार की चेष्टाएं या विशेष चेष्टाएं दोनों। और तदात्मिका, तदात्मिका माने सत आत्मिका, आत्मा भी उनमें मिला दिया, जैसे कृष्ण कर रहे हैं वैसे वो भी कर, उनकी चेष्टाएं कृष्णवत उनकी सब कुछ हो रही है। सदगुण गान गुण गुणान सदगुणानेव गायन को गुण का ही वर्णन करती हैं, कभी भी उनके दुर्गुणों को दोषों को कभी देखती नहीं है, सख्त में उनके गुणों को। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति का दोष देखता है तो वो प्रियत्व नहीं है, किंतु ये जगत में दोनों बातें हैं, ये होगा होगा नहीं, गुण देखेंगे दोष भी होगा। इसलिए वहां पर विशुद्ध प्रेम की बातें कर रहे हैं गायन को। न आत्मा आगाराणी संस्पर्श, अपने घर को आगार को सब कुछ को वो भूल गई। साथ ही साथ ये भी समझ लो कृष्ण अपने भक्तों के पास रहते हैं, जिस समय ये कृष्ण को इस प्रकार से स्मरण करके और सब भूल जाती हैं तो कृष्ण वहां पर होते हैं कि नहीं, कृष्ण भी अपने को घर को सबको कुछ भी भूल जाते हैं दोनों। कहते कहते सनातन गोस्वामी जी ने कहा ये वर्णन करना है, उनका आलाप उनका सदात्म होना ये सब वर्णन करना बहुत कठिन है, इसलिए अपने खुद वर्णन नहीं करते। भागवत का और श्लोक न लेकर के लिया कहा, जो गोपियों के भावों की प्रशंसा करने वाली हैं वो मथुरा की कुमारियां या राजकुमारियां या वहां की रानियों इनका बात कर रही, वो लोग इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण गए हुए हैं मथुरा में आए, अक्रूर जी इनको ले आए, ले आने के बाद में शाम को या शाम को आए हैं नगर प्रवेश किया, उनके सखा लोग मधुमंगल इत्यादि उनके साथ ही हैं और यहाँ के लड़के सब उनसे मिल आए, अच्छी टोली उद्धम वाली टोली कृष्ण के पीछे पीछे चल रही है, आए वृंदावन की तरफ से। इसलिए महाविद्या में एक पेड़ के नीचे नंद बाबा अपनी गड़िया गाड़ी खड़ा कर और वहीं पर अपना टेंट लगा दिया, टेंट माने क्या, गाड़ी के नीचे ही अपना पुआल बिछा दिया या कुछ और बिछा दिया और उसके ऊपर में विश्राम करने लगे, और उनके साथ में और भी गोप थे। और कृष्ण कहा जे बाबा मैं जरा नगर को देखा हूं, बस नगर देखने के लिए नहीं। लोगों ने सुना जे कृष्ण और बलदेव मथुरा में आ गए हैं, उनको भी कुछ ऐसा भान था, ऐसी गंध लगी थी जे ये वसुदेव जी के लड़के दोनों हैं और ये चूते चोरी वहां पर पले हैं गोकुल में, बड़े बलवान हैं, कंस इनको मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, इसलिए कृष्ण को देखने की बड़ी लालसा हो, बड़े सुंदर हैं ये दोनों। सारी नगर की जितनी भी रमणियां थी वो अपने अटारियों पर चढ़कर और देखने के लिए आ रही हैं, चारों तरफ में भगदड़ मच गई। कोई अंधा था, एक अंधे मित्र को कह रहा है जैसे कृष्ण आ रहे हैं चलो देखें, आंख नहीं है तो अभी देखने के लिए दोनों मचल पड़े और दोनों चल पड़े अंधे भी गलियों में। ये अभी जो देख रहे हैं ना मथुरा की गलियां ऐसे ही सकरी गली थी प्राचीन काल से 5000 वर्ष से पहले से, बहुत पुरानी बस्ती है, ये कम से कम लाख करोड़ वर्ष की होगी मथुरापुरी, जब शत्रुघ्न जी ने इसको बसाया उस समय की। तो उस समय में कृष्ण चल रहे हैं और वृद्ध जवान लड़के बाल वृद्ध मतलब सब लोग स्त्री पुरुष सब लोग उनको देखने के लिए दोनों तरफ में खड़े हो रहे हैं और लड़के उनके पीछे पीछे चलने लगे। बड़ा ही मनोरम दृश्य हुआ, स्त्रियां जो खेत सवार रही थी मथुरा की भी, वो अपनी सास को या अपनी ननद को या दूसरे सहेली को कह रही है जल्दी से छोड़ो नहीं तो कृष्ण चले जाएं, और कहती है बस हो गया है थोड़ा सा है, अगर यदि कृष्ण ही चले गए तो फिर ये समाज करके क्या होगा। इसे वो सब लोग व्यतिव्यस्त हो करके कृष्ण के दर्शन के लिए, कोई उस समय में एक क्षण भी नहीं बिताता यदि कृष्ण चले गए। अभी कृष्ण बहुत दूर है किंतु पहले से कृष्ण उस दिन तो घूम करके चले गए और फिर उसी दिन में ही वो वस्त्र वाला रजक रजक का वध किया, मांगने पर वस्त्र नहीं दिया तो उसका वध कर दिया, हाथ से ऐसे काट दिया और उसके बाद में उसका वस्त्र सब ले लिया और ले करके जैसे तैसे पहन लिए और थोड़ी देर में दर्जी मिला सुदामा, पता जी हमारे कपड़े सिल देगा बना देगा साथ साथ, बस देखता ही रह गया उनका रूप। बोले जी क्यों नहीं बनाऊंगा, किसका बनाऊंगा, आप तुम्हारा नहीं बनाऊंगा, बस बना उनको माफ करके और साथ ही साथ में कपड़े काट करके 10-20 आदमी लगा दिए सब बच्चों के और उनको चोली सहित सुंदर सुंदर सुघड़ पेश बनाया और उनको पहना दिया। कृष्ण ने उनके तरफ में देखा और प्रेमा भक्ति उसको दे दिया जो बड़े बड़े साधनों से नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान से प्रीति रखना चाहता है तो यदि साक्षात नहीं होता मन ही भिन्न कृष्ण को यदि अर्पण कोई कर दे, कुछ नहीं है तुलसी का एक पत्ता भी अर्पण कर दे, कुछ नहीं है, क्या है वो जलम सोयम पत्रम पुष्पम फलम फलम सोयम जो मैं भक्त्या तदहम भक्ति पतितम नामी प्रजता प्रजतात्मना, जो बड़े प्रयत्न से ललक करके हमारी सेवा के लिए यदि प्रतिपूर्वक एक पत्ता एक चुल्लू पानी पत्रम पुष्पम फलम ये सब चीजें यदि दे देता है, एक तुलसी का पत्ता का कितना मूल्य लौकिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से तो बहुत मूल्य, किंतु लौकिक दृष्टि से एक तुलसी का पत्ता भी भगवान को यदि प्रेम पूर्वक अर्पण कर दिया तो प्रजतात्मना, प्रजतात्मना माने जो प्रयत्न करके बड़े सावधानी के साथ में कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर के कृष्ण उसको, कुछ भी नहीं है पानी दे दिया कृष्ण को, ऐसे लेकर के पानी कृष्ण के लिए अर्पित कर दिया, कुछ भी नहीं है हृदय भी अर्पण कर दे और भी तो बड़े प्रसन्न होकर के उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से वो उसने अर्पण किया और उन्होंने ग्रहण कर लिए, केवल कपड़ा कृष्ण का सिलाई नहीं लिया, कृष्ण सिलाई भी देना चाहते हैं तो जैसे केवट ने कुछ लिया नहीं ना पार उतर आई, जैसे हम कोई एक चीज दे देंगे हाउ सागर को जो पार करेंगे ना तो केवट से केवट पैसा नहीं लेता है, तो हमको ये मैं आपको इस नदी से उतार रहा हूं और हमको आप हम दोनों में मिताली हो गई पैसा कैसा हम भी नहीं लेंगे और आप भी मत लेंगे, आप नहीं लेंगे माने क्या बिना साधन भजन का ही हमको भाव सागर से पार कर देंगे ये बात। और भगवान ने ऐसा ही किया, जब राष्ट्रीघासन पर जब बैठे सब लोगों को सब कुछ दे रहे हैं उनकी आंख एक जगह खोज रही है थी, वो सखा हमारा कहाँ है केवट कहाँ है, किंतु वो किसी कारण से नहीं आ सका नहीं आ सका, कृष्ण खोज रहे हैं ये सखा हमारा कहाँ है, और उसे मैंने प्रतिज्ञा की है कोई वचन के द्वारा नहीं, भावना के द्वारा, हृदय के हृदय से बातचीत हुई या आंख से बातचीत हुई, बोली से बातचीत नहीं है। खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको, अंत में जब नहीं आया तो दूसरे के द्वारा संदेश भिजवाया। ऐसे परम कृपालु श्री रामचंद्र जी, कृष्ण की तो और क्या बात है। तो इस तरह से मन में मन भी यदि कोई कुछ कर दे तो भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं जब उस समय में कृष्णचंद्र जी, उसके बाद में आगे बढ़े मालाकार मीरा, उसने कृष्ण को गले में और सब बलदेव इत्यादि को सजा दिया। और आगे बढ़े तो सोने के थाल में कुब्जा जी चंदन लेकर घर जा रही है। उम्र अभी बहुत थोड़ी सी है, किशोरी है, किंतु सब अंगों से टेढ़ी है। विशेष करके यहां पर कुब्ज निकला हुआ है, गर्दन ऐसी है तो बड़ी सुंदर, किंतु कुब्ज से वो गड़बड़ हो गई है। बर कृष्ण ने उसको देखा और उसको पहचान लिया और कुब्जा नहीं पहचान सकी। ये कौन है कुब्जा जी? पूर्व जन्म की हैं, तो पहचान गए और झट उसको क्या किया, उसका कहा जैसे चंदन हमें लगा देगी केसर और तिलक, बस बोली नहीं निकली, प्रेम उसके हृदय में उमड़ पड़ा। सोचा यदि कृष्ण को नहीं, कंस को लगाते लगाते तो थक गई, बस कृष्ण को एक उसी स्थान पर बैठा दिया और सुंदर उसे उनके तिलक की रचना कर दी। अलका लगाए, तिलक सुंदर किया, गालों में मकड़ी ये सब लगाया और सुंदर सुंदर सब लगा करके अत्यंत राजपुरुष जैसा राजपुरुषों से ही और भी राजपुरुष कर दिया। और ललचाई दृष्टि से कृष्ण की तरफ में देखा, कृष्ण जी ठीक है, मैं पहले जिस काम के लिए हूँ काम कर लूँ फिर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। बस वहां से आगे बढ़े और पहुंच गए इधर में रंगशाला। हाथी जाने नहीं दे रहा है और उसको, इसके बाद में शाम हो गई, फिर लौट आए और चारों तरफ में तहलका मच गया। कंस ने सोचा कि हमारा मृत्यु आ गया। दूसरे दिन नंद बाबा, वसुदेव जी, अक्रूर जी और कंस के पिता उग्रसेन, तथा स्थान तो सबको कंस ने बैठाया, सबके सामने मार करके अपनी छाती ठंडी करूंगा, अपने शत्रु को मारूंगा और ये लोग देखेंगे जो उनके बेटे असहाय रूप में मारे गए। उन्होंने समझा जैसे शायद ये भी उग्रसेन ही जैसा होगा, सिकंजों में जैसे बंद कर दिया। वहां पर कृष्ण वहां से प्रवेश किया, रंगशाला में प्रवेश करते ही एकदम चारों तरफ उथल पुथल हो गई, हाथी को भिड़ा दिया और उस समय में अनायास ही उसे खिलवाड़ करते ही उसे गिरा दिया दोनों भाइयों ने और उसी का दांत उखाड़ करके उसे मार दिया। इसके बाद में आगे बढ़े कैसे, उन्मत्त जैसे हाथी का छोटा सा शावक होता, सिंह शावक, ऐसे ही हाथी के दांत जिस पर रक्त के छींटे पड़े हैं और गालों पर भी कहीं कहीं रक्त का छींटा है, इस प्रकार से लेकर के और चले। जब रंगशाला में उपस्थित हुए, नगाड़ा बजने लगा युद्ध जैसा और पहले से चारों मस्तिष्क कौशल इत्यादि सब प्रस्तुत थे और बजा रहे थे और ऐसे पहलवानी जैसा। उस समय में चारुण और मुष्टिक ने कृष्ण और बलदेव को पकड़ करके अखाड़े में खींच लिया। कृष्ण ने कहा, अरे हम अभी दूध मुखे बच्चे, अभी छोटी उम्र के 8-10 बरस के, और आप लोग लोहे के समान शरीर, वज्र के समान, इतना पर्वत के समान, हम लोगों की आपकी आपका ये कुश्ती उचित नहीं मालूम पड़ता। हमारे उम्र वाले जो हैं उनसे हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा, उम्र नहीं देखी जाती, खूब दूध और मक्खन खाया है तुम लोगों ने और दाव कुश्ती भी खेला है गोचारण के तुम्हें, और जिसने अगासुर बकासुर और ये सब लोगों को मारा वो साधारण आदमी नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी न्याय अन्याय की बात नहीं है, सभी कुछ न्याय है, राजा के लिए सब कुछ किया जाता है। हम लोग राजा को प्रसन्न करने के लिए महाराजगण को हम लोग अखाड़े में दंगल लड़ेंगे। तब फिर कृष्ण और बलदेव से भी रहा नहीं गया, वो लोग भी अखाड़े में निकले। उसी समय में वहां की जो राजकुमारियां या राजाओं की रमणिया थी, मथुरा थी, जादव पूर्वंशाएं, वो बड़ी शोकग्रस्त हो गई और कृष्ण के तरफ में देख करके अफसोस करने लगे। इस धर्मसभा में अन्याय हो रहा है, इस जो धर्मसभा में है इस सभा में सबको अन्याय होगा, अधर्म होगा। क्यों यहां पर अधर्म हो रहा है? ये जानबूझ करके इन लड़कों को मारने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए इस सभा में जो है वो देख रहा है, सुन रहा है और इसका प्रतिरोध नहीं कर रहा है, उन सब लोगों को अधर्म लगेगा और उसके लिए पाप होगा। कहने के बाद उसी समय में वो कह रही हैं, पहले तो वो प्रसंग आया जो द्वादश रसों से विशिष्ट लोगों ने कृष्ण को अपने अपने रूप में देखा, मल्लानाम असनी नीलंग नरवरह इत्यादि देखा। पहलवानों ने देखा ये वज्र के समान, कंस ने देखा साक्षात जम हमारे लिए हैं, बड़े बड़े विद्वान पुरुषों ने, ऋषियों ने क्या देखा, विराट जोगिनां परदेव नहीं, और जादुओं के लिए परदेवता और मनुष्यों के लिए परम सुंदर और गोपियों स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव और मैया के लिए बच्चा। कौन मैया? वहां पर देवकी जी हैं, नंद बाबा हैं, वसुदेव हैं, इनके लिए उग्रसेन के लिए ये सब, सखाओं के लिए मित्र, जो जैसा है उसी रूप में वो देखो। खित भुजांग शास्ता, पृथ्वी के जो नरेश हैं, कौन जो कलिकाल में जो असुर मर करके रामचंद्र जी की लीला में इस समय में क्षत्रिय हुए, वो कौन है? राक्षस हैं वो, जैसे कंस इत्यादि, काल नेमी ये सब राक्षस हैं, जरासंध इत्यादि सब वैसे ही हैं। कुछ ब्राह्मण हुए, कुछ क्षत्रिय हुए, तो वो करेंगे जैसे ये सब लोग हैं, वैसे जैसे थे वैसे ही। 10 प्रकार के लोगों ने 12 प्रकार से कृष्ण को देखा, 12 रसों में देखा, और तब ये कृष्ण को साक्षात कामदेव के समान देख करके फिर ये कह रहे हैं, ओहो हम लोगों जैसा यहाँ पर कोई भी हम जैसा दीन ही नहीं है, हम लोग दुर्भागा हैं, यदि कोई सौभाग्यवान है तो गोपियां हैं ब्रज, उसी के लिए वो कह रहे हैं। गोपियों की महिमा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं एक श्लोक में। गोप्य तपः किमाचरन् यमोद्यम स्वरूप लावण्य सार असमोर्धनन्न सिद्धम दृग्धि किवंत अनुसवाभिनमम दुराप एकांत धाम जसस श्रिय ऐश्वर्य। ये श्लोक है साधकों के लिए, कीर्तन का विषय है, श्रवण का विषय है, ध्यान का विषय है, सब प्रकार से सेवनीय है। ध्यान किसका करेंगे? इन सब लीलाओं का ध्यान करेंगे कृष्ण के लिए। कीर्तन क्या करेंगे? इन्हीं लीलाओं का कीर्तन, कृष्ण कैसे हैं, और कीर्तन किस चीज का करेंगे? इन्हीं लीलाओं का। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन जो कुछ नवदा भक्ति है सब इन लीलाओं के लिए है। वो तो परम सौभाग्यवान है जो भगवान के इस लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन सब किया करते हैं। यथार्थ में यही ध्यान का विषय, कीर्तन का विषय, सबका विषय। ठाकुर जी का अर्चन करते हुए भी अर्चन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उस समय क्या बिना भावना का ऐसे ही देखेंगे निरस्त हृदय से ठाकुर जी को, न क्या देखेंगे। जसोमती नंदन का कीर्तन हो रहा है अथवा कीर्तन हो रहा है कदम्बकान नरास परायण वृंदादि निवासी, क्या उस समय चिंतन होगा। ये सब आरती के समय में स्मरण करने के लिए ये सब गान के रूप में दिए जाते हैं। यदि उस समय इन सब लीलाओं का स्मरण करते हुए ठाकुर जी का दर्शन किया जाए तब तो फिर वो एक साधन हो जाता, नहीं तो वो कुछ साधन नहीं। इसके द्वारा मन उसमें लग जाता है और निराकार में यदि ध्यान लगाएं तो एक सेकंड भी नहीं टिकेगा और वहां से एकदम रसातल की तरफ में ले जाएगा। तो गोप्य तपस की मां चरण जब स्वरूप कृष्ण का रूप देख करके बड़ी मुक्त हो गई और कह रही अहो सखियों, गोपियों ने क्या तपस्या की थी जो इस प्रकार लावण्य सार सौंदर्य का सार असमोर्ध रूप, असमोर्ध माने असमोर्ध, जिनके बराबर नहीं है, जिनसे अधिक किसी कोई कल्पना नहीं जा सकती, असम और सर्वविलक्षण, सर्वविलक्षण माने जगत में विश्व में ब्रह्मांड में गोलोक में वैकुंठ में कहीं भी ऐसी तुलना का स्थल नहीं है, जो रूप प्रतिक्षण नवनवायमान रूप में दृष्टिगोचर होता है और जो रूप जस सी और ऐश्वर्य का एकमात्र आधार है। जितने जगत में जस है सी है शोभा है सौंदर्य है और ऐश्वर्य है सबका ये आधार है, ऐसे श्री कृष्ण के रूप को नवनवायमान रूप में निरंतर आंखों के द्वारा नेत्रों के द्वारा गोपियां वो पान करती, निरंतर पान करती। हम लोग अभी देख रही हैं किंतु नवनवायमान रूप में नहीं। कृष्ण का रूप जो है वो कहां प्रतिक्षण वर्धमान होता है वृंदावन और अनुरागी के निकट, जिसको अनुराग नहीं है कंस को क्रोध हो जाएगा कृष्ण का रूप देख करके, रावण को राम का रूप देख करके क्रोध हो जाएगा, उनको आनंद नहीं होगा। इसकी व्याख्या में बतला रहे हैं यहां पर बड़े क्षोभ के साथ ये यादों की पत्नियां ये कह रही हैं, ओहो गोपियों ने क्या तपस्या की थी, किसी तपस्या के द्वारा कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण को नहीं पाया जाता कोई तपस्या के द्वारा, किंतु बिना तपस्या के भी तो कृष्ण नहीं मिलते, तो इन्होंने कौन सी आश्चर्यजनक तपस्या की थी, साधन भजन किया था जो वो निरंतर कृष्ण का इस रूप माधुरी का नवनवायमान में पान करते हैं। कहते हम लोग जानती हैं ध्रुव जी ने तपस्या की थी, क्योंकि ध्रुव उनसे पहले के हो गए, उन्होंने अंतिम दिनों में खाना पीना वायु भक्षण इत्यादि सब छोड़ दिया था, कठोर तपस्या की, किंतु कृष्ण को तो नहीं पा सके, कृष्ण का रूप नहीं दर्शन कर सके। हमने सुना है हिरण्यकश्यप ने कितना 60,000 वर्ष तपस्या की, अंगूठे के ऊपर में पैर को ऊंचा करके ध्यान लगा करके कर किया, उसको क्या मिला, बल पौरुष मिला जो ब्रह्मा इत्यादि के लिए है, किंतु एक क्षण में उसका भी विनाश हो गया। ये तो तपस्या का फल देखा, और हमने कश्यपी अदिति का तपस्या कठोर हमने देखा है, हमने द्रोण और धरा का भी देखा है और उसका फल भी देखा है, किंतु ऐसा किसी को फल नहीं मिला जैसा गोपियों को मिला कृष्ण के इस नवनवायमान रूप को देख करके
बड़े अनुराग से पान करना ये तो गोपियों के लिए ही संभव है। तो इन्होंने कौन सी तपस्या की, तो प्रतीति नहीं होती। अच्छा, कितना दूर पर, कितना और कैसा, कैसी तपस्या की थी? सचमुच में ये कहने का तात्पर्य है, ऐसा प्रेम किसी साधन के द्वारा संभव पर नहीं है। ये स्वरूप शक्ति की काय दिव्य स्वरूप है गोपियां, इसलिए। और यदि भोगी होगा भी तो उनके अनुगत्य में कोई राग अनुगा भक्ति यदि करे रूप रघुनाथ की भांति, तब कहीं जा करके साधन सिद्धा होने के बाद में ऐसा हो सकता है, किंतु बहुत ही कठिन है। न जाने कितने युग युगांतर लग जाएंगे, ब्रह्मा की आयु भी समाप्त हो जाए उसके लिए। अथवा किस तपस्या के द्वारा, गौरवस्त अमुष्ट शब्द का प्रयोग किया है, किमचरण जदमुष्म रूपम। अमुष्म माने जिस चीज को निकट में हम देखते हैं